तो श्रील रामानंद राय के तिरुभाव के उपलक्ष्य में हम तिरुभाव भजन गा रहे हैं। जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ बोलेंगे रामानंद राय ठाकुर।
जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेना प्रभु को था गिला रामानंद राय ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता, कहाँ दास रघु नाथ पति ते पावा, कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीराज, एक काल को था गिला गोरा न टेरा, पसान कोटि बो माथा अनाले पसीबो, गोरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, नितय गौर हरि बोल,
श्रील रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
देखो ये कीड़ा है फूल का, ये फूल में ले लो, कोई अब फूलों में डाल देंगे, दे दो इनको फूलों में डाल देंगे।
तो ये जो तिरुभाव भजन है इसके शब्द इस प्रकार से हैं, जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए कहाँ से, गोलोक धाम से, क्यों लाए, प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु कोथा गेला रामानंद राय ठाकुर, तो वैसे रामानंद राय ठाकुर कहाँ चले गए, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं और कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट, दोनों भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए। एक काले को था गेला गोरा नटराज, और अकस्मात गौर वर्ण के जो नर्तकों के राजा कौन हैं, श्री चैतन्य, वो कहाँ चले गए। पाषाणे कुटीबो माथा, अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनले पसीबो या अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांग गुणेरा निधि को था गिले पावो, गुणों के समुद्र गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। शेषव संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगी थे भगवान के उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रोते हैं। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रिय नर्म सखा कश्चित अर्जुन पांडवोर्जुन मिलित्वा समभूत रामानंद रायः प्रभो प्रियः। इसमें ये बताया गया है कि एक तो प्रिय नर्म सखा है कश्चित अर्जुन, कोई अर्जुन नाम के भगवान के प्रिय नर्म सखा है, ब्रज में भगवान कृष्ण के प्रिय नर्म, नर्म का मतलब है हंसी मजाक करने वाले, बहुत प्रिय और हंसी मजाक करने वाले एक अर्जुन सखा है ब्रज के। एक तो वो अर्जुन और दूसरे अर्जुन पांडव अर्जुन, पांडव अर्जुन दो अर्जुन, कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन और ब्रज में एक सखा अर्जुन है, दोनों कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। कुरुक्षेत्र के अर्जुन है वो भी है, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं कृष्ण, और ये अर्जुन जो प्रिय नर्म सखा है हमेशा कृष्ण को हंसाते रहते हैं और हंसी मजाक की बातें करते हैं। दो अर्जुन मिलित्वा, दोनों अर्जुन मिल करके समभूत रामानंद राय, दोनों अर्जुन मिल करके रामानंद राय बने हैं, तो ये प्रभु प्रिय, तो प्रभु के कितने प्रिय होंगे, प्रभु मतलब श्री चैतन्य, श्री चैतन्य के कितने प्रिय होंगे आप सोचिए। दो अर्जुन मिल जाएं एक साथ, एक कुरुक्षेत्र के अर्जुन कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, है ना, अर्जुन के शत्रु तो कृष्ण के शत्रु हैं, अर्जुन के मित्र तो कृष्ण के मित्र, कृष्ण जो है अपना शत्रु मित्र को नहीं जानते, जो अर्जुन का शत्रु है वो कृष्ण का शत्रु है, अर्जुन का जो मित्र है वो कृष्ण का मित्र है, है ना, इतना उनका जो है संबंध है, अटूट संबंध। और दूसरे ब्रज के अर्जुन सखा बहुत प्रिय है ना, और दोनों मिलकर के बने राय रामानंद, तो भगवान को कितने प्रिय होंगे, ये सोचने वाली बात है ना। इसके बाद है, अतो राधा कृष्ण भक्ति प्रेम तत्वादिकम कृति रामानंद गौर चंद्रम प्रत्यवर्णयत अन्वहम। इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम तत्व ये सब जो है रामानंद ही गौरचंद्र को हमेशा प्रतिदिन वर्णन करते थे। जगन्नाथपुरी में एकमात्र यही कार्य था रामानंद राय का, भगवान के संग हमेशा दिन रात रहना और राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम का तत्व सब जो है यही वर्णन करते थे श्री चैतन्य को, है ना। कोई संगी नहीं इनका, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के सेवा, है ना। ललिता इति आहुर एके यत तत एके नानु मन्यते। इनको ललिता भी कुछ लोग कहते हैं कि ललिता के अवतार हैं, लेकिन दूसरे लोग इसको नहीं मानते, तो फिर क्या मानते हैं, विशाखा जी के अवतार, इनको विशाखा का भी अवतार मानते हैं, है ना। तो दो अर्जुन हो गए और एक विशाखा, तो क्या हो गए, 3 in 1, ब्रज के अर्जुन सखा, कुरुक्षेत्र के अर्जुन सखा और विशाखा सखी, और चौथी भवानंदम प्रति प्राह गौरव यत्तम प्रथापति, हाँ क्षमा करना। भवानंद को जो है भगवान गौर ने ये कहा था कि तुम प्रथा के पति हो, प्रथा ने कुंती, कुंती के पति, तुम कुंती के पति हो। कुंती के पति कौन है? महाराज पांडु। तुम महाराज पांडु हो, इसका मतलब कि आपके जो पांच पुत्र हैं ये पांच पांडव हैं, उनमें से एक अर्जुन है, रामानंद राय अर्जुन है। फिर गोपी अर्जुन है, अर्जुनी या सार्धम एकी भूयापि पांडवा, अर्जुन हो या राय रामानंद इत्याहुर उत्तमा। कुछ विज्ञजन कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन और अर्जुनिया नाम की गोपी एक साल मिलकर राय रामानंद हुए हैं। अर्जुनिया नाम की एक गोपी भी है, तो एक अर्जुन हो गए और एक ब्रज के अर्जुन सखा हो गए, दो हो गए और तीसरे विशाखा सखी, तीसरे हो गए और चौथे अर्जुनिया सखी, चार हो गए, 4 in 1। पद्म पुराण के उत्तर खंड में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अर्जुन अर्जुनिया गोपी हुए। अतः निष्कर्ष ये है कि प्रिय नर्म सखा अर्जुन और अर्जुनिया गोपी और पांडुपुत्र अर्जुन तीनों मिलकर राय रामानंद हुए हैं। फिर भी चार हो गए। अगर अर्जुनिया गोपी और अर्जुन को एक ही मान लें तो विशाखा मिला करके कितने हो गए? कितने हो गए? तीन हुए। एक तो पांडुपुत्र अर्जुन, दूसरे ब्रज के सखा अर्जुन, दो हो गए और तीसरी विशाखा। अच्छा, तीन हुए। हाँ, प्री नर्म सखा अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन और ठीक है और विशाखा सखी। तो ब्रज के ग्वाल बाल अनेक थे, सभी भगवान की गौचारण और अन्य लीलाओं में सहायता करते थे। दूसरे जो पांडुपुत्र अर्जुन हैं उन्हें कौन नहीं जानता, ये श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे। कुंती द्वारा इंद्र के आवाहन पर उनके अंश रूप में पांडुपुत्र कहलाए। वैसे श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पति हैं। कुल मिलाकर श्री कृष्ण से इनका संबंध ओतप्रोत है। गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतेर ध्रुवाणि तिर्मतिर्म में। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ये मेरा मत है। जिस प्रकार श्री कृष्ण लीला में अर्जुन का एक महत्वपूर्ण अभिनय है, उसी प्रकार श्री चैतन्य लीला में राय रामानंद का अपना महत्वपूर्ण अभिनय। अर्जुन ने गीता कहलवाई, अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी और राय रामानंद ने भगवान को उपदेश दिया। इस लीला में भगवान ने उल्टा व्यवहार किया। कृष्ण लीला में अर्जुन शिष्य बने और कृष्ण गुरु बने, उपदेश दिया, और गौर लीला में भगवान चैतन्य शिष्य बने और राय रामानंद को गुरु बनाया और फिर प्रश्न किए और तत्व की बातें इस प्रकार से हुई। इनका जन्म भवानंद के घर में सन 1465 में हुआ था। 1465 में इनका जन्म हुआ। और श्री चैतन्य का जन्म कब हुआ? 1486 में। तो ये बड़े हैं या वो बड़े हैं? कौन बड़े हैं? रामानंद राय बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? ये है 65 और वो 86, 21 साल बड़े हैं। राय रामानंद 21 साल बड़े हैं। कटक में हुआ था, पूर्वज इनके कटक में रहने वाले थे, फिर विजयनगर में आकर रहने लगे। विजयनगर में बाल्यकाल से अति प्रखर बुद्धि वाले थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्य राघवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य राघवेंद्रपुरी, राघवेंद्रपुरी के शिष्य राय रामानंद। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र ने इन्हें मंत्री पद पर नियुक्त किया था। इन्हें विद्यानगर का समस्त राजभार सौंप रखा था। अब चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7 में महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा है। तो जब श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में सब भक्तों से आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूं, तो सुनिए, जब श्री चैतन्य विदा हो रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की। क्या? हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरी करेंगे। इसके आगे और मैं कोई आपसे मांगूंगा नहीं, एक ही बात मांग रहा हूं, अंतिम प्रार्थना है। कौन कह रहे हैं? किसने कहा? सुन नहीं रहे क्या? है रामायण राय कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं। कहां पर? जगन्नाथपुरी। किससे कह रहे हैं? महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग? ताबे सार वैभव में कहे प्रभु रे चरणे अवश्य पाली बे प्रभु मोर निवेदने। गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। आप दक्षिण भारत यात्रा में जाएंगे तो गोदावरी नदी में जाएंगे तो वहां तट पर रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे अधिकार हायन ते हो विद्यानगर। आप कृपया उन्हें नीच गृहस्थ मान करके उनकी उपेक्षा ना करिए, उनको नीच गृहस्थ मान करके उनकी उपेक्षा ना करिए। मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिलिए। शूद्र वेशाई ज्ञाने उपेक्षा ना करीबे हमारे बचाने तारे अवश्य मिलीबे। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, कुछ बातें पढ़ के सुना रहा हूँ, पूरा नहीं। श्री रामानंद राय करण जाति के थे जो बंगाल में कायस्थ जाति के बराबर है। ये जाति सारे भारत में शूद्र के तुल्य मानी जाती है। रामानंद राय इसी करण जाति के थे, अतः वे शूद्र माने जाते थे। वे उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्यपाल थे। दूसरे शब्दों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य को यह बतलाया कि यद्यपि रामानंद राय शूद्र जाति के हैं किंतु हैं अत्यंत जिम्मेदार सरकारी अधिकारी। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य से विनती की कि वे रामानंद राय की उपेक्षा ना करें, जैसे राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलना चाहते हैं और राजा प्रताप रुद्र के भी ये तो नीचे हैं, तो फिर आप इनसे फिर क्यों मिलेंगे? तो उनसे कहा नहीं नहीं, आप उनको ऐसा मत समझिए, आप इनसे जरूर मिलिए। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य से विनती की कि वे रामानंद राय की उपेक्षा ना करें क्योंकि वे शूद्र में कुल में उत्पन्न होकर और भौतिकतावादी लगते हैं परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं। श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी करते थे और करण जाति के थे। वे निश्चित रूप से गेरु अवस्था धारण करने वाले सन्यासी नहीं हैं किंतु परमहंस गृहस्थ पद को प्राप्त हैं। सन्यासी का सबसे ऊंचा जो स्तर है परमहंस, है ना, तो परमहंस गृहस्थ हैं वो। श्री चैतन्य का शिष्य बनने के पहले सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को सामान्य विषय समझते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे ना, तो वैष्णव का महत्व नहीं समझते थे। जब तक चैतन्य के शिष्य नहीं बने, कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य, तब तक रामानंद राय को क्या समझते थे? सामान्य विषयी समझते थे क्योंकि सरकारी नौकरी में लगे गृहस्थ थे। किंतु जब भट्टाचार्य को वैष्णव सिद्धांत का वास्तविक ज्ञान हुआ तो वे रामानंद राय के ऊंचे आध्यात्मिक पद को समझ सके, इसलिए उन्होंने उन्हें अधिकारी कहा। अधिकारी वो है जो श्री कृष्ण के दिव्य विज्ञान को जानता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, इसलिए सारे गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहलाते हैं। सारे गृहस्थ भक्त क्या कहलाते हैं? दास अधिकारी। दास अधिकारी गोपेश्वर दास अधिकारी, परमात्मा दास अधिकारी ही। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के उपयुक्त व्यक्ति हैं। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारे संगे रे योग्यते हो एक जन पृथ्वी के रसिक भक्त ना ही तार सम। जो बहुत विद्वान है, कौन कह रहे हैं? सार में भटकता है। किससे कह रहे हैं? चेतन महा। कहाँ पर हैं? जगन्नाथपुरी में। वे अत्यंत विद्वान और भक्ति रस में निपुण हैं, वास्तव में बहुत उन्नत हैं, और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि वे कितने महान हैं। पांडित्य आर भक्ति रस दोहरते मोसिया दोहर दोहरते हो सीमा संभासी ले जाने बे तुम्हें ताहारे महिमा। जब पहले मैंने रामानंद राय से बात की थी तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं क्या था? मायावादी था। हाँ, कि उनकी बातचीत और चेष्टाएं दिव्य और असामान्य हैं। मैंने उनका परिहास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे। मैं क्या था? मायावादी। इसलिए मैं वैष्णव की महिमा नहीं समझा, तो मैंने परिहास किया था। अलौकिक वाक्य चेष्टा तारना बुझिया परिहास करे आचे तारे वैष्णव बलिया। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को पहचान पाया। अब तो मुझसे दूर हैं, अब मैं समझ पाया कि वो कितने ऊंचे हैं। आप उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। तुम्हारे प्रसाद ए बे जाने जाने नो तार तत्व संभासी ले जाने बे तारे मन महत्व। श्री चैतन्य ने सार्वम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य मिले। महापूर्ण सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। अंगीकार कार्य प्रभु ताहारे वचन तारे वेदाय देते तारे कैला आलिंगन। अब बीच में कई लीलाएं हैं, उनको छोड़ करके अब कुछ दिनों के बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर आ गए। पूर्ववत वैष्णवकारी सर्वलोक गणे गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए। स्नान कर लिया और घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। घाट छाड़ी कत दूरे जाले सन्निधाने वसे प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। उस समय गाजे बाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां स्नान करने आए। हे निकाले दूलाय चाड़ी रामानंद राय स्नान कारी बारे आइला बाजाना बाजाए। रामानंद राय के साथ वैदिक ब्राह्मण थे बहुत से। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण किया। तारे संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण विधि मत कहलाते हूँ स्नान आदि तर्पण। श्री चैतन्य जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं ये कौन है? रामानंद राय। महाप्रभु इनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक उठे कि उनका मन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अपने शरीर को तो उन्होंने नियंत्रित किया है, ये मन उनका नियंत्रित नहीं हो रहा, मन तो वहीं जा रहा है कि कैसे मिलूं। प्रभु तारे देखे जाने ए राम राय तारे मिले ते प्रभु मन उठे थाए। यद्यपि श्री चैतन्य का मन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है किंतु वे धैर्य पूर्वक बैठे रहे। क्यों भाई? सन्यासी। तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देखकर इनसे मिलने आए कि सन्यासी को नहीं जाना चाहिए गृहस्थ के पास। कुछ है, क्या बोलते हैं, मर्यादा, सन्यासी की मर्यादा है। तो वो खुद आए रामानंद राय सन्यासी से मिलने के लिए आए। तथापि धैर्य धारी प्रभु रहिला वसिया रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। अपूर्व सन्यासी देखा। अपूर्व का मतलब पहले कभी जिसको नहीं देखा है, ऐसे अपूर्व सन्यासी को देखा तो रामानंद राय आए। रामानंद राय ने देखा श्री चैतन्य 100 सूर्यों के समान क्या है? प्रकाशमान। 100 सूर्यों के समान प्रकाशमान, केसरी वस्त्र धारण किए हैं, शरीर विशाल सुदृढ़ है, आंखें कमल के समान है। सूर्य सत्य साम्य कांति अरुण बसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। कौन हो सकते हैं ये? उनके पास गए, तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर सादर नमस्कार किया। देखिया ताहारे माने हैला चमत्कार आसिया कारेले दंडवत नमस्कार। और महाप्रभु खड़े हो गए महाप्रभु क्या हो गए, खड़े हो गए। उन्होंने रावण दाय को उठने और कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। श्री चैतन्य उनका लिंगन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उठी प्रभु का ये उठ कहा, कृष्ण कृष्ण तारे आलिंगित प्रभु हृदय सा कृष्ण। अब वो जो है प्रणाम कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी देर तक प्रणाम करते रहे हैं। और श्री चैतन्य बहुत उत्कंठित हैं कि कब ये उठे और मैं इसका आलिंगन करूं। तो श्री चैतन्य को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि उठ नहीं रहा है मैं कैसे। वो दंडवत कर पड़े हुए हैं, जमीन में पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। और श्री चैतन्य की तृष्णा बढ़ती जा रही है कि कब उठे और मैं इसका आलिंगन करूं। उठी प्रभु का है उठे कहा, कृष्ण कृष्ण तारे आलिंगित प्रभु हृदय सा कृष्ण। तब महाप्रभु ने पूछा कि आप रामानंद राय हैं? तो उन्होंने तर दिया, हाँ मैं आपका तुच्छ दास हूं और शूद्र मंद शूद्र हूं। रामानंद राय ने कहा, है ना, क्योंकि दर्शन तो पहले कभी किया नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा था कि गवर्नर है, राज्यपाल है, तो इस तरह से उन्होंने अंदाजा लगाया श्री चैतन्य की यही होंगे। और इतने ब्राह्मण हैं, इनके साथ में मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा। जब पूछा कि आप हैं, तथापि पूछे ले तो मेरा है रामानंद ते हो कैसे हम दास सूत्र मंद। तो रामानंद राय ने कहा कि मैं गवर्नर हूँ, तो सन्यासी कभी मिलता नहीं ऐसे राजा से, कि प्रताप राजा प्रताप रुद्र जो है राजा की हैसियत में रहते हैं, तो सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा से नहीं मिलूँगा। लेकिन इन्होंने अपना परिचय क्या दिया कि मैं आपका दास हूँ, मैं गवर्नर नहीं हूँ, राजा नहीं हूँ, मैं आपका दास हूँ और मंद शूद्र हूँ, है ना। तो यही योग्यता है श्री चैतन्य से मिलने की। आपको क्या बनना पड़ेगा, बहुत मंद, क्षुद्र, नीच, पतित, ये क्वालिफिकेशन श्री चैतन्य से मिलने की क्वालिफिकेशन ये है। आप राजा हैं तो आप अनक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, ये आपकी डिसक्वालिफिकेशन है। आप राजा हैं तो श्री चैतन्य से नहीं मिल सकते, आप नीच हैं, पतित हैं, तो मिल सकते हैं। श्री चैतन्य ने रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया। इस तरह प्रभु और दास दोनों प्रेमावेश में अचेत हो गए, दोनों बेहोश हो गए। लोग पहले एक गिरा था और एक खड़ा था, अभी दोनों गिर गए, दोनों के दोनों गिर गए वहीं पर। तब तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन प्रेमावेश प्रभु भृत्य दोहे अचेतन, दोनों बेहोश। क्यों, जन्म जन्म के संगी हैं दोनों, जन्म जन्म के दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया, दोनों ही जमीन पर गिर गए। स्वाभाविक के प्रेम दोहार उदय कारीला दुआ आलिंग या दो भूमि ते पड़िया पड़ीला। तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं, रामानंद राय विशाखा सखी के अवतार हैं, क्योंकि श्री चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण है, अतः विशाखा और कृष्ण में प्रेम का उदय होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं, और विशाखा गोपी राधा रानी की प्रधान सहायिका हैं। रामानंद और श्री चैतन्य ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें क्या हुआ, स्तंभन हुआ। स्तंभन का मतलब क्या है, अकड़। स्तंभ का मतलब जैसे खंभा, खंभे की तरह अकड़ जाए, अकड़ गए, स्तंभन हुआ, स्वेद हुआ। स्वेद मतलब पसीना, शरीर में पसीना आया, और अश्रु, आंखों से अश्रु, कंपन, कंपन हुआ, और पुलक, पुलक मतलब रोमांच, और वैवर्ण, रंग फीका पड़ गया, दोनों के रंग फीके पड़ गए, हैं? ये भाव लक्षण प्रकट हुए, और मुखों से रुक रुक कर कृष्ण कृष्ण बोलने पा रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण। ये स्तंभ अस्त्रुकंभ पुलक वर्ण द्वारे मुखे ते सुनि गदगद कृष्ण वर्ण। जो कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों थे, इस प्रेम आवेश को देखा तो चकित रह गए। जीवन में कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं, क्या इतना प्रेम हो सकता है किसी मनुष्य का, किसी मनुष्य के साथ। तो जो कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण है वो तो अपना मंत्र पाठ करने वाले हैं, वो थोड़ी है? ऐसे व्यवहार को जानते हैं, तो उनको ऐसे व्यवहार का कभी अनुभव नहीं था, तो देखने लगे क्या हो गया ये, ऐसा भी प्रेम हो सकता है क्या है? तभी कल्पना ही नहीं की ब्राह्मणों ने, सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। अब विचार कर रहे हैं कि दोनों में जो है बड़ा आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, देखिए ब्राह्मण गाने रहिला चमत्कार वैदिक ब्राह्मण सब कार्य ने विचार। अब क्या विचार कर रहे हैं, सुन रहे आप लोग, विचार कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं, आप लोग आंखें बंद कर रहे हैं, ठीक से विश्राम नहीं किया है इसलिए आंखें बंद हो रही हैं। ब्राह्मण लोग विचार कर रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे हैं, वैदिक ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण नहीं है, कैसे ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है। ब्राह्मण विचार कर, हम देख रहे हैं इस सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, तो बहुत ऊंचे धरातल का है सन्यासी, और समाज के चौथे वर्ण के शूद्र का आलिंगन करके क्यों रो रहा है, इसको तो छूना भी नहीं चाहिए, और वर्ण में चौथा वर्ण है, उसका आलिंगन करके रो रहा है, तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य इसका है, इस सन्यासी का तेज ब्रह्म है, ब्रह्म के समान तेज है। एता सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंग्य केने कार्यने क्रंदन। तो इतना विनम्रता कैसे हो सकती है, जो ब्रह्म के समान तेजस्वी ब्राह्मण वो जो है शूद्र का आलिंगन करके रोए, तो एक तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और दूसरा आश्चर्य क्या हुआ कि ये रामन राय मद्रास के गवर्नर हैं, ये तो इतनी बड़ी पोस्ट में है और बहुत पंडित हैं, बहुत बड़े गंभीर हैं, तो सन्यासी का स्पर्श करके पागल की तरह ये व्याकुल क्यों हो रहे हैं, ये अपनी जगह पर बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, तो सन्यासी का आलिंगन क्यों करेंगे इतने ऊंचे व्यक्ति, तो अपनी अपनी जगह पर दोनों बहुत क्या हैं, ऊंचे हैं, तो दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर रहने वाले हैं, ये लोग कभी भी एक दूसरे के निकट नहीं हो सकते। यही महाराज महापंडित गंभीर सन्नी से सन्नासी स्पर्श मत हैला अस्थिर। जब सारे ब्राह्मण और श्री चैतन्य और रामन राय के कार्यों के विषय में सोच रहे थे, तो दोनों में आश्चर्य हो रहा है, ये कभी आलिंगन नहीं कर सकते एक सन्यासी का, क्योंकि कितने ऊंचे गवर्नर हैं, ये आलिंगन कर रहे हैं एक सन्यासी का, और पागल की तरह रो रहे हैं, आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, दूसरा आश्चर्य क्या है, ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, ब्रह्म जैसा तेज, शूद्र का आलिंगन करके रो रहे हैं, दोनों में आश्चर्य दिखाई दे रहा है, दोनों अपनी अपनी स्थिति को भूले हैं कि कितने महान स्थिति में हैं, और क्या हो गए हैं दोनों, दोनों क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, ये कौन सोच रहे हैं, वैदिक मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मण। जब सारे ब्राह्मण श्री चैतन्य और रामानंद के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे, तो श्री चैतन्य ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया, तो उन्होंने अपने दिव्य भावों को रोका। जब देखा श्री चैतन्य ने कि भाई ये बाहरी लोग जो है हमें देख रहे हैं, तो अपने दिव्य भाव को रोक लिया। तो जो भक्त होते हैं वो अपने भाव को छिपाते हैं, क्योंकि रो रहे हैं, स्तंभन अकड़ गए ये, तो उन्होंने उनको संवरण किया, है ना। जो सहजिया प्राकृत सहजिया क्या करते हैं, उनके अंदर वो दिव्य भाव होते नहीं हैं, वो दिखावा करते हैं, आंसू निकालते हैं, आंसू नहीं निकलते हैं, आंसू जबरदस्ती निकालते हैं, दिखावा करते हैं, तो वो सहजिया होते हैं, प्राकृत सहजिया। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद भी अपने दिव्य भावों को कभी आंसू बहे तो उनको रोकने की कोशिश करते थे, क्योंकि ऐसे लोग हैं उनको जो है प्रचार करना है, तो रोकते हैं। यहाँ श्री चैतन्य ने भी अपने भाव को रोका है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, रामन राय का श्री चैतन्य से घनिष्ठ संबंध था, अतः उन्हें सजातीय यानी भगवान के अंतरंग व्यक्ति माना जा सकता है, किंतु सारे वैदिक ब्राह्मण अनुष्ठानों को मानने वाले, अतः वे श्री चैतन्य के साथ किसी प्रकार की घनिष्ठता नहीं बना पा रहे, इसलिए उन्हें विजातीय लोग कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये शुद्ध भक्त नहीं है, कोई कितना ही विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, किंतु यदि वो शुद्ध भक्त नहीं है तो विजातीय है, यानी जाति निकाला, या यूं कह लें अभक्त है। यद्यपि श्री चैतन्य और रामानंद भाव विभोर होकर आलिंगन कर रहे थे, किंतु महाप्रभु ने बाहरी ब्राह्मणों को देखकर अपने भावों को रोका। जब दोनों के मन स्थिर हो गए तो दोनों बैठ गए और श्री चैतन्य ने हंसकर इस प्रकार कहना शुरू किया, सुस्त हो या दो सही स्थान है ते वसीला, तब हसी महाप्रभु का ही तेला गीला। सार्वभौम ने सर्वम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझसे बतलाए हैं। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं। और उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया कि मैं आपसे मिलूं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हारे गुण तुम्हारे मिले ते मोरे कारी ले जतने। निस्संदेह मैं आपसे मिलने आया हूँ, अच्छा हुआ कि बिना प्रयास के आपसे भेंट हो गई, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा और आप मिल गए मुझे। कौन कह रहे हैं? श्री चैतन्य कह रहे हैं, तो मामी ली बारे मोर एथा आगमन भाल हैला अनाया से पाईलो दर्शन। रामन राय ने उत्तर दिया, सारम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक मानते हैं। रामन ने क्या उत्तर दिया? सारम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक मानते हैं, इसलिए मेरा हित करने के लिए सोचते रहते हैं कि मेरा हित कैसे हो सकता है, इसलिए राय का है सार्वभौम कार्य वृत्त ज्ञान परोक्ष है मोर हेते है सावधान। उनकी कृपा से मुझे यहाँ आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा है कि मुझे आपका दर्शन मिला है। मैं मानता हूँ कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। तार कृपा पाई नो तो मारे दर्शन आज सफल है मोर मानो से जन्म। मैं देख रहा हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर ही कृपा की है, अतः मेरा स्पर्श किया है। सारम भट्टाचार्य की बात मान करके मेरा स्पर्श किया, मैं तो स्पर्श करने लायक हूँ नहीं, तो आपने उनके ऊपर कृपा की है इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा हुई है। आपने उनकी बात मान करके मेरा स्पर्श किया, यद्यपि मैं स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ, आपके प्रति उनके प्रेम के ही कारण, आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। सार्वभौम में तो मार कृपा तारे ए चिन्ह अस्पृश्य स्पर्शीले हैं या तारे प्रेम अधीन है। आप उनके प्रेम के अधीन हैं, आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं और मैं भौतिकतावादी एक सरकारी नौकर हूँ, मैं शूद्रों में भी सबसे नीचा हूँ और नीच। कहा तो मैं साक्षात ईश्वर है नारायण, कहा मुई राज से विवि शूद्राधम। आपको इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं है कि आपको शूद्र का संग नहीं करना चाहिए, आप डरते नहीं, वेदों के आदेश से भी आप नहीं डरते। क्या वेदों का आदेश क्या है? कि शूद्र का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वेदों में शूद्रों की संगति करने का निषेध है, किंतु आपको मेरा स्पर्श करने में कोई नफरत नहीं हो रही है। मोर स्पर्श ना कारी ले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तो मा वेदे निषेध है। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव आपके रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। ये आपकी कृपा है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि वेदों के द्वारा क्या है मना किया गया है। तुम्हारी कृपा है तुम आकार आए, तुम्हारे कृपा है तुम आकार आए निंदे कर्म साक्षात ईश्वर है तुम ही के जाने तुम्हार मर्म। आप यहाँ मेरा उद्धार करने के लिए विशेष रूप से पधारे हैं, आप इतने दयालु हैं कि सभी पतितों को केवल आप ही उबार सकते हैं। आमान स्तारी ते तुमार यह आगमन परम दयालु तुम ये पाते थे पावन। सारे संतों का ये कार्य है कि पतितों का उद्धार करते हैं। मिर्चा की महका करें, इसलिए वे लोगों के घरों में जाते हैं, यद्यपि वहां उनका कोई निजी कार्य नहीं रहता है। महान दसो भाव ए तारी ते पामर निज कार्य नाही तब जान तार घर। हे प्रभु, कभी कभी बड़े बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर जाते हैं, यद्यपि ये गृहस्थ तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। जब कोई संत उनके घर जाता है तो ये समझना चाहिए कि गृहस्थों को लाभ पहुंचाने के अलावा उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। महाविचलनम नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम निशेष रहाए भगवन नान्यथा कल्पते क्वचित। मेरे साथ ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1000 व्यक्ति हैं और सबके हृदय आपके दर्शन से द्रवीभूत हो रहे हैं। आपका दर्शन करके ब्राह्मण लोग भी क्या हो रहे हैं? नहीं, शायद ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हमारे संग ब्राह्मण आदि सहस्र के जन तुम्हारे दर्शन समर्द्र विभूत मन। मैं हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए सुन रहा हूँ, आपके दर्शन का प्रभाव है, ये सब कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है, हर एक की आंखों में आंसू हैं, आपके दर्शन का प्रभाव मैं देख रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण नाम है सोने सामारे वादाने सामारंग है पोले कहते अश्रु नयने। हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षण और स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सामान्य जीवन में ऐसे लक्षणों का मिलना असंभव है। आकृति प्रकृति तुम्हारे ईश्वर लक्षण जीवे न संभवे ऐ अप्रकृत गुण। महाप्रभु ने रामन राय को उत्तर दिया। अब महाप्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं? रामन राय अपने को नीचा मान रहे हैं और महाप्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कि हे महोदय, आप सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं, अतः आपके दर्शन से हर एक हृदय द्रवित हो रहा है। तो चैतन्य रामानंद राय को ही बोल रहे, तुम्हारे दर्शन से हो रहा है सब। प्रभु कहे तो मैं महाभाग्यवतोत्तम तुम्हारे दर्शन मन। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, भगवान ने अपने को क्या बताया, मैं मायावादी सन्यासी हूँ, यानी मैं अधम हूँ। सन्यासी होकर के भी मायावादी क्या होता है, कृष्ण का अपराधी होता है। तो भगवान अपने को कितना नीचा बता रहे हैं, मैं मायावादी सन्यासी हूँ किंतु आपका स्पर्श पाने से मैं कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहा हूँ। मेरे मन में कृष्ण प्रेम क्यों आ रहा है, आपका स्पर्श से आ रहा है। भगवान ने जो है कितना रामानंद राय को महत्व दे दिया कि तुम्हारे स्पर्श से मेरे अंदर कृष्ण प्रेम का उदय हुआ है। और दूसरों को तो कहना ही क्या है, दूसरे लोगों का अनेरे की कथा आमे मायावादी सन्यासी आमे तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम भासी। सारो भट्टाचार्य जानते थे कि ऐसा होगा, इसीलिए मेरे अत्यंत कठोर हृदय को शुद्ध करने के लिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। कैसा अद्भुत बातें हैं, सारंग भट्टाचार्य ने मुझे शुद्ध करने के लिए आपके पास भेजा है, क्यों? भी जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं मायावादी हूँ। जबकि सारंग भट्टाचार्य मायावादी थे और वो शुद्ध हुए, शुद्ध वैष्णव बने श्री चैतन्य की कृपा से। तो श्री चैतन्य क्या कह रहे हैं, उन्होंने मुझे शुद्ध करने के लिए आपके पास भेजा है, मैं मायावादी हूँ। हे जाने कठिन मोर हृदय शोधिते सार्वभौम कही लेने तुम्हारे मिलीते। इस तरह दोनों एक दूसरे के गुणगान कर रहे हैं और अपने को नीच बता रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हे मत दोहे स्तुति करे दुहार गुण दोहे दुहार दर्शन आनंदते मन। उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण आया जो वैदिक नियमों का पालन करने वाला था, उसने नमस्कार किया। और महाप्रभु के समक्ष दंडवत गिरने के बाद उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भक्त जानकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ हंसते हुए रामानंद राय से इस प्रकार बोले, मैं आपसे श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ, मेरा मन ऐसा चाहता है, अतः मैं आपके दर्शन फिर से करना चाहता हूँ। श्री चैतन्य बोले कि अब कैसे दर्शन होंगे आपके, कैसे मिलन होगा आपसे मेरा, तो पूछ रहे हैं श्री चैतन्य। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पतित का को शुद्ध करने आए हैं किंतु मेरा मन आपको देखने से भी शुद्ध नहीं हुआ है, तो मतलब इतने से काम नहीं चलेगा, तो चालाकी है ना कि मेरा मन आपको देखने से शुद्ध नहीं हुआ है, कृपया 5-7 दिन रुकें और मेरे दूषित मन को शुद्ध करें, इतने दिनों में मेरा मन स्वयं शुद्ध हो जाएगा। तो 5-7 दिन लगेंगे मुझे शुद्ध होने में। दोनों एक दूसरे को जो है ऊंचा मानते हैं और अपने को अशुद्ध मानते हैं। श्री चैतन्य कहते हैं, मैं शुद्ध होने आया हूँ आपके पास, और ये कहते हैं आप मुझे शुद्ध करने के लिए आए हैं। दोनों ही यद्यपि दोनों एक दूसरे के बिछुए को सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी रामानंद राय ने महाप्रभु को नमस्कार किया और वहाँ से विदा ली। तब श्री चैतन्य उस ब्राह्मण के घर गए जिसने उन्हें आमंत्रित किया था, वहीं उन्होंने भोजन किया। जब संध्या हुई तो रामानंद राय और महाप्रभु दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित हो गए। शाम का स्नान करने के बाद श्री चैतन्य बैठकर रामानंद राय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कहाँ पर? गोदावरी के तट पर। रामानंद राय एक नौकर के साथ उनसे मिलने के लिए आए। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। तो ये जो है बहुत लंबी चर्चा है, इतना तो समय नहीं है, लेकिन कुछ लीलाएं हुई हैं रामानंद राय के संबंध में तो मैं जो है आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। एक लीला है 17 जून 2015 की, 17 जून 2015 की ये लीला है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। आज के दिवस पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु दिनांक 26 फरवरी 2015 की एक ऐसी लीला के प्रूफ की जांच कर रहे थे जिसमें श्री चैतन्य के एक महान संगी श्री रामानंद राय की बात आई थी। यद्यपि इस लीला में ये बात नहीं बताई गई कि वे महाराज प्रताप रुद्र के मंत्री थे, परंतु ये तो समझने की बात है कि वे एक मंत्री थे। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। इन पुस्तकों में जितनी भी लीलाएँ हैं उन सभी लीलाओं में अंतिम शब्द यही आते हैं, मैं तथा मेरे संगी। ये शब्द तो प्रत्येक लीला के अंत में आते हैं, परंतु प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने देखा कि इस लीला के प्रूफ में टाइपिस्ट ने संगी के स्थान पर मंत्री टाइप कर दिया। इस प्रकार लीला के अंत में मैं तथा मेरे संगी इन शब्दों के स्थान पर जो शब्द टाइप हुए थे वे थे मैं तथा मेरे संग मेरे मंत्री। आप समझ रहे, ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस लीला में यद्यपि मंत्री शब्द नहीं आया था फिर भी जिन महापुरुष का नाम आया था वे किसी राजा के मंत्री थे। उस लीला के अंतिम शब्दों में जहाँ पर सदा संगी शब्द आता है वहाँ टाइपिस्ट ने मंत्री शब्द टाइप कर दिया। यद्यपि टाइपिस्ट की भूल से ऐसी गलती हुई, परंतु इसमें श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुआ एक अद्भुत घटना योग भी था कि जिस लीला में राजा के एक मंत्री का नाम आया था उस लीला के अंत में संगी के स्थान पर मंत्री शब्द का टंकण हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब ये घटना है 9 मई 2015 की। आज के दिवस पर मैंने श्री चैतन्य के चरणों की प्राप्ति नाम की एक लीला को लिखित रूप दिया जो सन 2010 की गर्मियों में से किसी एक दिवस की थी। ये 9 मई 2015 की घटना है। इस लीला की विशेष बात यह थी कि मुझे राधा रानी के दोनों चरणों का पूरे चरणों सहित एक चित्र प्राप्त हुआ था, फिर एक अन्य चित्र प्राप्त हुआ था जिसमें श्री कृष्ण के दोनों चरणों के पूरे चिन्हों सहित दर्शन था, तथा इन दोनों चित्रों के प्राप्त होने पर मैंने मान लिया था कि मुझे श्री चैतन्य देव के दोनों चरणों का पूरे चिन्हों सहित चित्र प्राप्त हो गया है, क्योंकि राधा तथा कृष्ण दोनों मिलकर श्री चैतन्य देव बनते हैं। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ऐसी लीला मैंने आज के दिवस पर लिखी, क्योंकि आज श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस था। अब ये हमें पता नहीं था ये 2015 मैं 9 मई की तारीख में तिरुभाव दिवस था रामानंद राय का। तो मैंने जब लीला लिखी थी तो उस लीला में ये बात आई थी कि श्री कृष्ण के दोनों चरण चिन्ह मुझे प्राप्त हुए चित्र, और राधा रानी दोनों चरणों के चित्र प्राप्त हुए। तो ये बहुत आश्चर्य की घटना है कि आज रामानंद राय का तिरुभाव दिवस था, और श्री रामानंद राय के चरित्र में भी ये बात आती है कि उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि श्रीमती राधा और श्री कृष्ण दोनों एक होकर श्री चैतन्य देव बन गए। श्री कृष्ण ने ऐसी घटना का योग बनाया कि एक विशेष लीला एक ऐसे दिन पर लिखी गई जिस दिन एक ऐसे महापुरुष का तिरुभाव दिवस था जिसने देखा था कि राधा तथा कृष्ण मिलकर श्री चैतन्य देव बन गए, जबकि उस लिखित लीला में भी ये बात आई थी कि श्री राधा तथा श्री कृष्ण के चरणों के चित्र मिलकर श्री चैतन्य देव के चरणों का चित्र बन गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटनायोग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। हरि बोल, हरि बोल। अब एक लीला है असित गोविंद, हाँ असित गोविंद पढ़ के सुनाएंगे। इसमें जो है मैं शब्द जो आ रहा है वो इनके ही लिए आ रहा है, तो इनको माइक यही देना है, यही बात देना पड़ेगा। ये पढ़ के सुनाओ।